శాంతి. ఓం శాంతి. ఏక బార్ హమ్ సబ్ మిల్కర్ ఉస్ రీతి సే ఓం శాంతి బోలెంగే జైసా హమ్ సబ్ నే సునా హై యజ్ఞ కే ఆది మే బ్రహ్మా బాబా కే సాథ్ సాథ్ సబ్ లోగ్ బోలా కర్తే థే. అందర్ ఏక గహరీ శ్వాస్ లెంగే और फिर उस श्वास को छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेकर उस श्वास को छोड़ते हुए शांति की ध्वनि करेंगे. सब अटेंटिव होके बैठ जाएं. अब गहरी सांस लें. ओ वास्तव में आज का जो विषय है सिद्धि स्वरूप कैसे बने, तो ये अगर एक लाइन में बोलना चाहें तो उसका उत्तर यही है कि ओम शांति के यथार्थ स्वरूप में हम सब स्थित हो जाएं. और जब ओम शांति की यथार्थ स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, पहले दिन से ही जब से सप्ताह कोर्स शुरू होता है या संस्था में आते हैं, तो ओम शांति के बारे में हम लोग को बताया जाता है कि ओम का अर्थ मैं आत्मा और शांत स्वरूप हूँ. तो थ्योरेटिकली तो ये जान जाते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, लेकिन इस बात को जीवन में उतारने के लिए पूरा जीवन ही लग जाता है. और ब्रह्मा बाबा जैसी महान आत्मा को, जिनके तन में परमपिता परमात्मा का की प्रवेशता थी, उसमें उन्हें भी 33 वर्ष से अधिक लग गया. 1937 में, और तब से लेकर 1936-37 से लेकर, और जब बाबा अव्यक्त बने 1969 में, 33 वर्ष में, तो 33 वर्ष लग गए बाबा को भी ये संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को और पूरे सिद्धि स्वरूप अवस्था को प्राप्त करने में. तो हम सब भी बाबा के मार्ग के राही हैं. बाबा ने जो जो मार्ग दिखाया है उस पर चल रहे हैं. और हम सबको भी विश्वास है कि जैसे बाबा बने, ऐसे हम सब भी अवश्य ही बनेंगे, बनकर दिखाएंगे और अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगे. तो इसी विषय पर ही आज हम लोग कुछ चर्चा करने जा रहे हैं. आज की मुरली में भी ऐसा ही था, वरदान में भी यही था कि सिद्धि स्वरूप बनने के लिए मंशा संकल्प, उसमें मामेकम, हाँ, मन मना भाव, इसकी स्मृति रहे. और कर्मों के अंदर भी हमारे इस स्थिति में स्थित होकर हम कर्म करते रहें, तो हम धीरे धीरे इस स्थिति को प्राप्त करते जाएंगे. कौन सी स्थिति? सिद्धि स्वरूप की स्थिति. अब हम एक एक देखते हैं. लगभग 12-15 पॉइंट हैं जो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हमें मार्ग प्रदर्शना सदैव समय प्रति समय देते रहते हैं. तो इसमें हमें एक मुख्य बात बाबा बताते हैं, पहला कि हम जो भी कर्म करें वो मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करें। कोई भी कर्म होता है वो उसका आदि मध्य अंत जान करके हम कर्म करें। कई बार क्या होता है, कर्म कर लेते हैं बाद में फिर या तो कर्म के फल को देख के पश्चाताप करना पड़ता है या फिर ये होता है कि ये कर्म हमें नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए अगर कर्म करने से पहले हम अपनी उस स्थिति में स्थित होकर आदि मध्य अंत इस कर्म का क्या फल होगा, ये कर्म क्या किस तरफ हमें ले जाएगा, उस स्थिति में स्थित होकर कुछ देर सोच करके बाबा को याद करके और तब कर्म करते हैं तो कर्म में सफलता समाई होती है। और सिद्धि स्वरूप का एक अर्थ यही है, जीवन में सफलता मिले। जो भी हम मन में संकल्प करें, वाणी से जो उच्चारण करें और कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म करें उसमें सफलता मिले, वो ही जैसे सिद्धि स्वरूप का एक लक्षण है। तो पहली बात तो ये, और इसमें हम लोगों को बताया गया था, बाबा ने भी समय प्रति समय बताया है कि दूसरी बात कि हमारा ये पुरुषार्थ होता रहे। कैसे? कि तीनों कर्म हमारे साथ साथ, जब हम कर्म करते हैं तो कई बार कर्म में इतने बिजी हो जाते हैं कि मंशा में बाबा की याद भूल जाती है, विस्मृति आ जाती है। इसीलिए दादियां हमें बताती हैं कि पहले जब वो सेवा पर निकले तो सेवा में इतनी कठिनाइयां होते हुए भी साधन कोई लगभग नहीं के बराबर थे, लेकिन सफलता बहुत ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि साधन नहीं होते हुए भी साधना पूरी थी। अगर दो तीन बहनें जा रही हैं, समझा रही हैं किसी को, एक समझा रही है वाणी से, कर्म कर रही है जैसे बोल रही है, और दूसरी बहनें जैसे उनको योगदान कर रही है, याद की स्मृति, बाबा की याद और बाबा की याद से सकाश उस आत्मा को दे रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि अकेले ही हम समझाते हैं, दो तीन नहीं भी होते हैं, तो हम सदैव इस बात को स्मृति में रखें कि मुंह अपना काम करे लेकिन मन हमारा बाबा की स्मृति में हो, और उस स्मृति के साथ अगर हम समझाते हैं तो उसके अंदर इतना बल रहता है, इतनी शक्ति रहती है कि वो आत्मा के अंदर जैसे धीरे धीरे दिल में वो बात उतरती जाती है और सहज रीति से वो बाबा का बनने की राह पर चल पड़ता है। तो इसमें ये भी ध्यान रखें कि एक तो पहले त्रिकालदर्शी होकर काम करें, आदि मध्य अंत देखकर, दूसरा तीनों स्वरूपों से हम इकट्ठे ही उसको आत्मा की उसको सेवा करें, उसको समझाएं, बताएं, और जब अगर वो कुछ बोल रहा है तो हम उसमें स्मृति में रहें, बाबा इस आत्मा को बल दो, शक्ति दो। तो वो आत्मा जितना जितना बोलती जाएगी, धीरे 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 हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारे चेहरे से, हमारे नैनों से, हमारी भ्रकुटी से उसे इसका शक्ति स्वरूप का, सकाश का, हमारे ऑरा का, जो लाइट का ऑरा निकलता है उसका उसे अनुभव होता जाएगा। इससे हम सहज ही सिद्धि स्वरूप सफलता मुहूर्त बनते चले जाएंगे और हमें किसी भी बात की कोई भी कठिनाई नहीं होगी। वो आत्मा जैसे बस बाबा की बनी बनाई हमें लगेगी कि जैसे ये आत्मा तो बनी हुई है। तीसरी बात बाबा बताता है, दादा ने कहा भी है, हाँ बिल्कुल ऐसा, अंत में जैसे कोई भी पढ़ाई करते हैं, जब अंत में रिजल्ट निकलता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो समझा जाता है हाँ इन्होंने इसको पास कर लिया, ये डिग्री मिल गई। ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को भी कितने सर्टिफिकेट लेने के लिए बोला है, याद है ना, कितने। वैसे कई बार अलग अलग समय बाबा अलग बात बोलते हैं, लेकिन मोटे रीति से 3 सर्टिफिकेट हम सबको लेने हैं। 3 सर्टिफिकेट में 1 सर्टिफिकेट है प्रभु पसंद, 1 है स्वयं पसंद, 1 है जग पसंद। यानी कि हम जो भी कार्य करें वो एक ऐसे हो जो तीनों से हमें ये सर्टिफिकेट मिले, हमारी अंतरात्मा भी बोले हाँ ये ठीक है, बाबा कई भी छत्र छाया के अंदर रह के वो कार्य होगा तो बाबा का भी आशीर्वाद सदा रहेगा, और तीसरा पूरा संसार भी बोलना चाहिए, हमारे मित्र संबंधी निकट वाले सब बोले हाँ ये बहुत अच्छी आत्मा है। तो भगवान से सर्टिफिकेट किस चीज से मिलेगा, आज भी मुरली में बाबा ने कहा था ना, आज की ही मुरली में, कौन सी एक बात धारण करने से बाबा से सर्टिफिकेट मिलेगा, बाबा ने कहा था सच्चे होकर रहना है, सच्चे दिल पर साहब राजे। तो हमें सच्चाई और सफाई वो चाहिए, बाबा को प्रिय ही वो है जो बच्चा साफ दिल का होता है। सच्चाई से बाबा को भी सब बात बताता है, कहने को हम सब पुरुषार्थी हैं, गलतियां भी होती हैं, लेकिन उसका सहज तरीका भी आज बाबा ने बताया है हमेशा कि जब हम सच्चे होकर चलते हैं और बाबा को अगर बता देते हैं कि बाबा ये भूल हुई मुझसे ऐसा, तो आधा माफ भी हो जाता है, कितना हल्का हो जाता है। हम गलती करते हैं तो खुद भारी हो जाते हैं, तो इसीलिए एक कहा भी बताया कि सच्चे दिल पर साहब राजी, और उसकी पहचान क्या होगी, उसकी पहचान ये होगी कि हम जैसे खुशी में नाचते रहेंगे, सच तो बिठो नच, यानी कि हल्के रहेंगे, जो हल्का होता है वो खुशी में इजीली नाचता रहता है, वो नाचता रहेगा। और क्या होगा, सच्चा जो होगा ना व्यक्ति, वो व्यक्ति जब भी वो किसी को भी बताएगा उसका असर तुरंत होगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑरा जो है, वो गांधी जी की बात सुनी होगी, गुड़ खाते थे, माता बेटे को लाई, और जब गांधी जी ने खुद गुड़ खाना छोड़ा और उसे बताया बच्चे को, तो वो तुरंत मान गया और छोड़ दिया उसने भी। तो उसकी माँ ने भी पूछा कि भाई ये बात कहनी थी तो ये तो आप हफ्ते पहले ही कह देते, सबको मालूम है ये कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। तो उसने कहा गांधी जी ने कि भाई मैं खुद ही पहले गुड़ खाता था, और अगर मैं उस वक्त बोलता तो मेरा असर नहीं पड़ता, अब मैंने इतने दिनों में वो खाना छोड़ दिया तो जिससे मेरी वाणी में भी इतना ओझ आया कि इसने छोड़ा है। तो ऐसे ही हम अगर सच्चे होंगे ना, तो सच बाप का परिचय जैसे ही देंगे तो बस वो हमेशा खुशी में दूसरा उस बात को स्वीकार कर लेगा। तो सच्चाई का सर्टिफिकेट बाबा से लेना है तो हमें सच्चे और साफ रहना है। दूसरी बात, अगर हमें अपने से सर्टिफिकेट लेना है, खुद से सर्टिफिकेट, तो कौन सी बात करनी होगी? इसका विपरीत सोचें कि अगर हमें अपने से सर्टिफिकेट लेना है तो कब हम अपने से सर्टिफिकेट नहीं ले पाते? जब कोई मर्यादा का, किसी चीज का उल्लंघन होता है। हमें मालूम है ये नहीं करना चाहिए ज्ञान के हिसाब से, लेकिन वो कार्य हो जाता है या हम कर लेते हैं तो अंतरात्मा हमारी खाती है, ये क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए जब कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन होता है तो फिर माया के कमजोरी के वशीभूत हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता, हमारा मन ही गवाही नहीं देता कि मैं कैसे लक्ष्मी नारायण जैसा पद पाऊंगा या पाऊंगी। भले सबके सामने बाबा पूछता है, हम हाथ उठा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम ये सोचते हैं कि मेरे अंदर तो ये कमी है, ये नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा क्यों। तो इस कारण से कहीं ना कहीं मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। तो अगर हम अपने से सर्टिफिकेट चाहते हैं कि मैं सदा खुश रहूं, मैं कभी भी माया रावण के वश में नहीं हूं, जैसे सीता ने जब मर्यादा की लकीर का उल्लंघन किया रावण के वशीभूत हो गई, तो ऐसा ना हो कभी, तो उसके लिए मुझे पल पल पर चेक करते रहना है कि कहीं पर भी मर्यादा का उल्लंघन ना हो। जो बाबा ने ज्ञान की बातें बताई है उन पर मैं आत्मा चलती रहूं। और तीसरा, जग पसंद। हम अपने से भी खुश, बाबा भी खुश, लेकिन परिवार वाले, पड़ोसी, प्रोफेशनल, बिजनेस वाले, दुनिया वाले अगर हमारी बात को नहीं मानते, जैसे शुरू में नहीं मानते थे, अब तो धीरे 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 बहुत बहुत लोग मानने लगे हैं, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो उनको मनवाने का सबसे सहज तरीका कौन सा है? बाबा ने कहा है, सबको सम्मान देते चलो। हर आदमी रिगार्ड चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है। हमारा ज्ञान सबसे विपरीत है, तो अगर हम एक तो विपरीत ज्ञान और वो बताएंगे तो हरेक की फीलिंग हर्ट होंगी कि भाई ये क्या, अभी तक तो हम सुनते आए हैं शिव शंकर अलग अलग है और अलग अलग नहीं है, एक ही है, ये बताते हैं कि वो तो एक ही है, हमने तो सुना भगवान सब जगह है, ये कहते हैं भगवान सब जगह नहीं है। ज्ञान हमारा विपरीत है, लेकिन इसको हम सत्य ज्ञान को, सत्यता को सभ्यता के साथ समझाए, बहुत प्रेम से, रिगार्ड से, और उनको बताए, अगर वो न भी माने कोई बात नहीं, आप इस बात को आज छोड़ दें, बाद में लेंगे, और लेकिन उनको निरादर होने का ऐसी फीलिंग बिल्कुल भी ना आए। तो इसीलिए एक ये आवश्यक है कि हम जो अगर सिद्धि स्वरूप बनना चाहते हैं, तो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हमें सत्य ज्ञान जो है, सच्चे बाबा के साथ सच्चा होके रहना पड़ेगा, मर्यादा का उल्लंघन न हो अंदर भी, और बाहर तो तभी मर्यादा का उल्लंघन होता है वाणी में, कर्म में, जब पहले मन के अंदर मर्यादा का उल्लंघन होता है। तो इसीलिए एक वैसा हो, और तीसरा, कोई हमारी बात माने न माने, बड़ा हो छोटा हो कुछ हो, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारा रिस्पेक्ट किसी के प्रति कम ना हो। जिसको भी ज्ञान सुनाए वो रिस्पेक्ट के, आदर के, सत्कार के साथ सुनाते चलेंगे, तो कभी भी उस आत्मा को ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये हमारा अनादर हो रहा है। हाँ, हमारे विचार भिन्न हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी वाले बहुत सभ्य हैं, बहुत अच्छी तरह ज्ञान सुनाते हैं, भले मैं नहीं मानता हूँ, मुझे धारण करने में कठिन है, वो ये महसूस करेंगे, लेकिन न तो अपमान की फीलिंग महसूस करेंगे और न ही हमारे ज्ञान को नकार देंगे। धीरे 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 आज बीज पड़ेगा, कभी ना कभी वो बीज सफलीभूत जरूर होगा। इस बात को जान करके हम रहे तो सिद्धि स्वरूप यानी सफलता मूरत हम बनते जाएंगे। और बाबा ने बातें बहुत बताई हैं। हम जैसे गीता में भी है, हाँ, लास्ट अध्याय का लास्ट श्लोक है, हाँ, क्या श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धारा तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नितिर नितिर्मम। अर्थात जहां पर योगेश्वर परमात्मा है और जहां पर अर्जुन धनुर्धारी है, इतना बड़ा जहां दोनों हैं वहां पर क्या है, वहां जीवे तत्र श्री विजय भूति, वहां धन धान्य है, सुख है, संपत्ति है, लक्ष्मी है, जीवन में सफलता है, न्याय है, जीवन की सब चीज है, लेकिन दोनों का होना आवश्यक है। दोनों का होना माने भगवान और अर्जुन, अर्थात अर्जुन जो है, हम सब अर्जुन हैं, कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहे हैं, तो हम अर्जुन तो बन गए हैं, सुबह से रात तक कार्य में व्यस्त रहते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष जो है हमारा, हम ही श्री कृष्ण है या हम ही परमपिता परमात्मा है, यानी दूरंदेशी होकर कर्म नहीं करते, वो उसमें हम सब लेख करते हैं। हमारा जो दृष्टिकोण है वो उतना विशाल नहीं है। तो अर्जुन जैसे तो बन गए, कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें वो श्री कृष्ण ईश्वर की तरह दूरंदेशी ईश्वर की तरह जो उसमें निर्माणता है, महानता है, सहनशीलता है, आत्मा के अंदर ये गुण है, आप सभी जानते हैं, सुख शांति आनंद पवित्रता प्रेम ज्ञान शक्ति, ये सब आत्मा के अंदर सातों गुण हैं। बस बाबा सागर है उसका, हम उनके स्वरूप हैं, लेकिन इन गुणों में स्थित होकर के हम नहीं रहते हैं। इस कारण से तो जीवन में जो गीता का सार है, जो अंतिम अध्याय में है, तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नितिर मितिर माम, कि वहीं पर श्री है संपत्ति, जो सतयुग में सब चीज है, वो यहीं पर ही हमें महसूस होंगी, विजय है, विक्ट्री है, न्याय है, सब कुछ चीज है। तो इसीलिए हमें जो भी कार्य है वो इस स्थिति में रह के करते चलेंगे तो सिद्धि स्वरूप हम स्वतः ही बनते चलेंगे। हर कर्म में हमें सफलता का अनुभव होगा, हमारे से वो ही कार्य होगा, संकल्प ही बाबा ने कहा वो उठेगा जो सिद्ध होने वाला होगा। ऐसा नहीं होगा मन में द्वंद्व चलता रहे, क्योंकि मन के अंदर जब संकल्प बहुत उठते हैं ना, व्यर्थ संकल्प बहुत उठते हैं, तो क्या होता है कि संकल्प कमजोर हो जाते हैं। बहुत जितने ज्यादा संकल्प होंगे उतने कमजोर होंगे, और जितने कम संकल्प उठेंगे उतने शक्तिशाली होंगे। इसीलिए शक्तिशाली संकल्प ही सिद्ध होता है, सफलता को प्राप्त, जो बाबा कहते हैं संकल्प में दृढ़ता। तो इस कारण से एक ये है, संकल्पों को अगर हम चाहते हैं उनमें दृढ़ता हो विचारों में मन में, तो विचारों के लिए तीन बातें कही जाती हैं संकल्पों के लिए। एक होता है संकल्प में क्वांटिटी ऑफ थॉट, क्वांटिटी माने विचारों की संख्या। तो विचारों की संख्या जितनी कम होगी जो मैं बताया, उतनी शक्तिशाली होगी। दूसरा क्वालिटी ऑफ थॉट, क्वालिटी ऑफ थॉट, जितने हमारे विचार महान होंगे, पॉजिटिव होंगे, दूसरों के प्रति सहयोग के होंगे, सहनशीलता के होंगे, वो विचार, क्वालिटी ऑफ थॉट, वो विचार ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। और वो कब होगा, क्वांटिटी ऑफ थॉट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी, यानी कि अगर क्वालिटी ऑफ थॉट हमारी महान है तो ऑटोमेटिकली हमारी क्वांटिटी ऑफ थॉट, विचारों की संख्या कम होती जाएगी। अभी विचारों की संख्या बहुत है, व्यर्थ विचार चलते हैं, किसी ने मानो कुछ कह दिया, हमें अपमान की महसूसता हुई और बस बहुत व्यर्थ विचार चलेंगे, और जितने व्यर्थ चलेंगे उतने वो क्वालिटी के नहीं होंगे, लो क्वालिटी के विचार होंगे। तो अपने विचारों से हम पहचान सकते हैं, एक तो क्वांटिटी कम से कम हो, क्वालिटी अधिक से अधिक ऊंची हो, और तीसरी बात है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, विचारों की डायरेक्शन किस तरफ चल रही है। जैसे डायरेक्शन अगर एक जगह एकाग्र होती है ना, वो शक्तिशाली होती है। सूर्य का बचपन में हम सब ने खेल किया होगा, एक लेंस पकड़ते हैं और सूर्य की किरणें जब उससे पास होती हैं तो नीचे कुछ कागज या कुछ भी होता है वो जलने लगता है। यानी कि सूर्य की किरणें तो ऐसी हैं, अभी हम सब लोग आराम से सहन कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके और हमारे बीच में एक लेंस रख देते हैं तो लेंस से क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, तो उससे सारी किरणें एक जगह एकाग्र हो जाती हैं, और जहां एकाग्रता है वहां पर सफलता है। तो इसीलिए सिद्धि स्वरूप होने के लिए क्वांटिटी क्वालिटी एंड डायरेक्शन, एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब आप सब समझ सकते हैं कि एकाग्रता अर्थात हम अपने मन के विचारों को जहां पर जितना समय और जिस स्थिति में एकाग्र करना चाहें, रोकना चाहें, उतना वो कर सकें, वो ही एकाग्रता है। सबको अनुभव होगा, घर में माताएं भी है भाई लोग, कि मन जो है ना बहुत चंचल है, भाग जाता है। थोड़ा भी घर में भी अगर हम पांच मिनट भी सत्संग के लिए बैठेंगे, पूजा के लिए बैठेंगे, बस उसी समय मन भाग जाएगा, ये काम करना है, ऐसा करना है, ये एकाग्र नहीं कर पाते। तो सिद्धि स्वरूप होने के लिए मन की एकाग्रता भी बहुत बहुत आवश्यक है। ये इस बात को हम जितना महत्व देंगे, और ये कब होगा, प्रैक्टिस से होगा, धीरे से। अब हर चीज प्रैक्टिस से होती है, घर में माताएं भी यहां बैठी हैं, शुरू शुरू में जब वो छोटी होंगी उनकी परिवार की माँ ने वहां पर सिखाया होगा रोटी बनाना, पहली बार में तो गोल गोल नहीं बन जाती, सारा नक्शे बन जाते हैं, फिर प्रैक्टिस होते होते अब ऐसी स्थिति आ गई है कि इधर गर्दन करके इधर बात करेंगे या इधर देखेंगे भी नहीं, अपने आप ही वो गोल गोल बनती रहेगी। साइकिल चलाना जब सीखते हैं, कई बार शुरू में गिरे होंगे, बाद में तो फिर अपने आप ही वो चले जाते हैं, चाहे मन कुछ भी सोचता रहे। तो प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो हम इसे छोड़ न दें। कई बार भाई बहने आते हैं, कहते हैं हमें इतने साल हो गए लेकिन हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होता, बार बार भाग जाता है। तो ये इसीलिए भागता है, हम थोड़ा समय अभ्यास करते हैं और फिर ये अरे भाग तो जाता ही है, क्या फायदा, चलो चलते फिरते याद कर लेंगे, चलो जब समय मिलेगा उस वक्त नहीं। इसीलिए बोलते हैं एक मिनट भी मिले, दो मिनट मिले, बस उस समय भी हम अगर बैठ जाएं, एक मिनट तो याद करना इजी होगा, जब एकदम सोचेंगे पंद्रह मिनट मिले हैं चलो करें, तो संभव है पंद्रह मिनट में से बारह मिनट ध्यान इधर उधर भटक जाए शुरू में, और दो तीन मिनट ही यूजफुल हो। लेकिन इससे घबराना नहीं है। ब्रह्मा बाबा को भी शुरू में जब ध्यान भटकता था तो ब्रह्मा बाबा ने भी ना लिखा मन को पत्र कि हे मन, मन और बुद्धि को पत्र लिखा कि मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, बुद्धि तू मेरे सेनापति है, तो लेकिन तुम दोनों इतने शक्तिशाली हो गए कि मुझ आत्मा राजा को जगह जगह भगाते रहे, जिधर जिधर तुम जाते रहे मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा। फिर दूसरे पैरों में बाबा ने लिखा था कि लेकिन अब मैं तुम्हें बता देता हूँ हे मन मंत्री कि अब मैं तुम्हारे कहने से नहीं भागूंगा तुम्हारे पीछे। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा अपने स्व चिंतन में, अपने स्व स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा। ऐसे ही हमें भी मन को ऑर्डर करना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहता है रोज रात को बैठ के मन बुद्धि संस्कार की दरबार लगाओ, कहाँ कहाँ मेरा मन भागा। तो जब ये हम करते हैं, और ये कब होगा, जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, आज यहाँ पोस्टेड है, सब उसकी बात मानेंगे, ऑफिसर है, कल उसका ट्रांसफर हो गया, दूसरी जगह चला गया, यहाँ दूसरा आ गया, तो जो पहला वाला है उसके कोई ऑर्डर यहाँ वाला मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि वो अपनी सीट पर सेट नहीं है, सीट पर नहीं है। तो जब हम भी अपनी सीट पर नहीं होते, तो वो सीट है हमारे जो बाबा ने दिया है, तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारा जो है अंदर, जो बाबा ने इतने बताए हैं, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं विजय माला का भड़का हूँ, मैं आत्मा कलप कलप की विजयी आत्मा हूँ। सॉरी। तो उस चीज में अगर हम स्थित रहेंगे तो क्या होगा? जब इसमें स्थित रहेंगे, उसमें स्थित होकर हम ऑर्डर करेंगे ना, तो वो ज्ञान गुण शक्ति तुरंत ही हमारे पास आएगी। अभी हम बुलाते हैं वो हमारे पास नहीं आती है। तो इसीलिए एक सिद्धि स्वरूप होने के लिए ये बात की आवश्यकता है। दूसरी बात कि जब हम संगठन में रहते हैं ना, कहते हैं बुद्धि का विकास जो है वो एकांत में होता है और चरित्र का विकास संगठन में होता है। जब संगठन होगा तो हम कोई ऐसी लूज बात नहीं करेंगे जो हमारे चरित्र पर उंगली उठाती हो, लेकिन एकांत होगा तो उसमें हम बिल्कुल बुद्धि का विकास एकांत में होता है। तो जब भी मनन चिंतन करें, अभी कई दिनों से बाबा का आ रहा है विचार सागर मंथन का, उसके लिए हम थोड़ा सा एकांत जरूर निकालें, शरीर का भी एकांत, मन का भी एकांत। तो इसीलिए एकांत में बैठ के शुरू में भले 5-10 मिनट 15 मिनट निकाले, और फिर देखे मन के एकांत जो बाबा ने दी हैं विचार सागर मंथन। कई बार बच्चे कहते हैं बाबा हमारा मंथन नहीं चलता है, क्या करें? तो बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है, बच्चे पिक्चर के सामने जाकर बैठ जाओ, मानो कल्प वृक्ष है। तो बाबा कहता है कल्प वृक्ष के सामने जाके बैठ जाओ और सोचो देखो जड़ में हाँ? बाबा मामा और ये सब महारथी भाई बहन बैठे हुए हैं और मैं भी जड़ के तने में सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के जड़ में हूँ। मेरे द्वारा ही सृष्टि की समस्त आत्माओं की पालना हो रही है, मैं ही इसका तना हूँ, एक एक पत्ते तक समस्त आत्माओं तक ब्रह्मा बाबा विश्व महाराजन बना। देखो बनता है लेकिन विश्व में बाहर कभी भी नहीं गया बाबा, एक बार भी नहीं, यहीं पर बैठ के मनसा शक्ति के द्वारा बाबा ने इतना तेज सकाश फेंका कि दूर दूर रहने वालों को भी वहीं अपने घर में बैठे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हो गया। तो हमें भी अपने मंशा को ऐसा शक्तिशाली बनाए कि दूर दूर बैठे लोगों को भी ये सकाश पहुंचे और वो आत्माएं हम आत्माओं का होवनहार देवी देवताओं का साक्षात्कार कर सके। तो इसीलिए क्योंकि ये मन जो है ना, मन जो है भटकता है, जैसे शुरू में भटकेगा लेकिन जब एकार होना शुरू हो गया तो बस एक राजा के पास एक व्यक्ति आया, सन्यासी, एक छोटा सा भिक्षा पात्र लेके, महाराजन इसके अंदर भिक्षा दे दो मुझे। उन्होंने राजन ने कहा ठीक है, मंत्री को बोला इसमें डालो। वो लाके राजकोष से अशरफियां, सोना, चांदी, हीरे सब डालता रहा। अब देखने में तो वो छोटा था लेकिन वो भर ही नहीं रहा था, खाली का खाली था। तो थोड़ी देर तक तो राजा देखता रहा, फिर राजा ने कहा महाराज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या राज है, आप कृपया मुझे बताएं। तो उसने बताया कि राजन ये जो भिक्षा पात्र है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है। आदमी की खोपड़ी होती है ना, इसमें ही यहीं पर मन होता है, और मन जो है बहुत चंचल होता है, भटक जाता है। मन में इच्छाएं होती हैं, एक इच्छा पूरी हुई चार और इच्छाओं का जन्म हो जाता है, वो इच्छाएं पूरी हुई 10 और इच्छाओं का जन्म हो जाता है। तो इसीलिए ये जो पात्र कभी भरता नहीं है, ऐसे ही मन जो है ना वो कभी भी इच्छाओं रहित नहीं होता है। जो इच्छा रहित बना लेता है, इच्छा मात्रम अविद्या हो जाता है, वो संपूर्ण हो जाता है। और मुझे ये कहते गौरव होता है कि मैं ब्रह्मा बाबा के साथ काफी रहा, 1962 से लेकर जब से ज्ञान में आए 1969 तक, और हमने बाबा को देखा। पहले बाबा हम लोगों को कहते थे कि बच्चे क्या पूछने आए हो, कैसा पुरुषार्थ चल रहा है, क्या योग की यात्रा है, आदि आदि। फिर धीरे धीरे बाबा समेटते गए, और मुझे एक और सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये मिला है कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी 1969 को, तो मैं यहाँ मधुबन में ही था और मुझे इन आंखों से बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी को कर्मातीत बनना है। तो इसलिए बाबा के पास जब हम 17 जनवरी की सुबह पहुंच गए आसाम में इंजीनियरिंग पास करने के बाद, जैसे आपको परिचय में बताया गया, धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से, जो अभी IIT है, वहां से इंजीनियरिंग पास करी, और आसाम में हमारी पोस्टिंग हुई ONGC में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो बाबा ने भेजते वक्त ही कहा था बच्चे जब तुम्हारा काम वहां हो जाएगा तो बाबा बुला लेगा तुम्हें, और क्योंकि हमारी जाने की दिल नहीं थी, वहां एक भी सेंटर नहीं था, एक भी गीता पाठशाला नहीं थी, कोई भी भाई बहन नहीं था आसाम में। तो ये है 1968 की बात, 1968 शुरू में ही हम वहां गए थे जब हमारी पोस्टिंग। तो उसके बाद बाबा ने जैसे 69 में हमें वहां बुला लिया वापस। क्यों? क्योंकि वहां पर सेवाएं बहुत बहुत विशाल हो गई बाबा के द्वारा। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा कि जब बाबा देखता है बच्चे में इतनी बुद्धि नहीं है, इतना अच्छी तरह नहीं समझा सकता है कोई, तो बाबा उसमें प्रवेश करके समझाते हैं। तो ये हमने भी वहां अनुभव किया, वहां गए और बस बाबा जैसे जैसे पत्र लिखता था, हर सप्ताह बाबा का पत्र आ जाता था, बच्चे ऐसे लेख के किनारे जाओ, शिव मंदिर में जाओ, इस तरह जाके हॉल लेके भाषण करो, आदि आदि वो करते थे, और बस तुरंत ही थोड़े समय में बहुत सारे वो जिज्ञासु आ गए, पैदा हो गए। और ब्यूटी ये थी उसमें, हमारा पुरुषार्थ कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि वो आते थे, बैठते थे, सुनते थे और ध्यान में चले जाते थे, साक्षात्कार हो जाता था, जैसा यज्ञ के शुरू में सुना है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे अगर समझाने लायक नहीं होते पूरा तो मैं उनमें प्रवेश और जिनमें बाबा करवाएगा तो वो काम तो सफल हुआ ही पड़ा है। तो इस रीति से बाबा ने वहां सेवा करवाई और अंतिम जनवरी का मास था 69 का, तो हमने बाबा को लिखा कि बाबा ऐसा सेवा में जाना है देहरादून, क्योंकि वहां से हम आए थे, बहन जी बुला रहे हैं म्यूजियम बनाना है। तो बाबा ने कहा बच्चे ठीक है जरूर जाओ, लेकिन पहले यहाँ आओ और तुरंत प्लेन से आओ। तो हम यहाँ से निकले, आसाम से बहुत दूर था, 3000 किलोमीटर दूर निकले, और हमारे लौकिक पिताजी भी आ गए, दिल्ली में मिल गए, और हम लोग 17 जनवरी की सुबह यहाँ पहुंच गए। और 17 और 18 जनवरी को देखा बाबा की कर्मातीत अवस्था स्थिति। बस बाबा सम्मुख आते थे, हम लोग सोचते थे बाबा से अब ये पूछेंगे, जैसे हमेशा पूछते थे पहले, कि कोई बाबा थोड़ा दृष्टि देते थे। अब बाबा कहते थे बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। मतलब हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, देखते ही बाबा मन की बात को समझ जाते थे। तो ये है एक कर्मातीत अवस्था का लक्षण, कि किसी हमारी अपनी स्थिति इतनी ऊंची हो, ब्रह्मा बाबा की जैसे इतनी ऊंची स्थिति, इतनी महान स्थिति हो गई थी कि बस देखा, नैनों से पढ़ा मन का हाल और तुरंत उसका समाधान कर देते थे। ये कर्मातीत स्थिति का एक लक्षण है। और इसके बाद क्या देखा, इसमें देखा कई बार ऐसा हुआ तो हमें होता था कि ताज्जुब है कैसे बाबा बैठे बैठे ही मन की स्थिति को जान जाते हैं। फिर दूसरी देखा बाबा ने कहा सब कुछ समेटते रहो, और हमने देखा बाबा ने धीरे 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 सारा यज्ञ का कारोबार धीरे धीरे हैंडओवर भी करते गए औरों को और समेटते गए। क्यों? क्योंकि अंत मति सो गति होती है, अंत में जहां हमारी बुद्धि होगी वहां पर ही हमारा जैसे पुनर्जन्म होगा, और अंत में ऐसी स्थिति अगर हमें बनानी है कि कोई भी याद ना आए तो क्या करना पड़ेगा, सब तरफ से समेटा हुआ हो, न कहीं लगाव हो, न कहीं झुकाव हो, न किसी से ईर्ष्या हो, न बैर हो। जैसे कबीर ने कहा है ना, एक फेमस है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना हमारा किसी से बहुत दोस्ती होगी कि उसे के बिना हम रह ना सके, और ना किसी से बैर कि उससे बदला लेना है, ये करना है वो करना है, नहीं। सबके प्रति हमारा समान भाव जितना होगा वो है एक सिद्धि स्वरूप की स्थिति। तो बाबा की ऐसी अवस्था थी, और बाबा को अंत समय में बस, पहले तो हम लोग पत्र लिखते थे, अभी भी हमारे पास बहुत पत्र मौजूद है बाबा के। तो बाबा लिखते थे पत्र और बच्चे भी पत्र लिखते थे, बाबा उनका जवाब देते थे, और इस तरह पत्र व्यवहार ही चलता था उस समय। ईमेल और इंटरनेट ये सब तो 60s में था नहीं, इसीलिए ये सब बाबा ने धीरे धीरे करके सब समेट लिया था, समेटते जा रहे थे, और अंत समय में बाबा ने पूरा ये जैसे समेट लिया। और 18 जनवरी की रोज रात्रि क्लास तो होती है 8:45 बजे, लेकिन उस दिन बाबा ने कहा आज बाबा 7 बजे क्लास कराएगा, सब बच्चे भोजन करके क्लास में पहुंचे, क्योंकि बाबा को तो आभास हो गया था संपूर्ण कर्मा की, आज बाबा की ये अंतिम क्लास है और आज बाबा बच्चों से विदा लेना वाला है। पहले से ही कर्मातीत अवस्था का एक यही लक्षण है, इच्छा मृत्यु। हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, अगर ये बिल्डिंग राजगिरी और सब लोग मर गए, दुनिया वाले भी और हम भी, तो हम में और दुनिया वालों में फर्क क्या हुआ? फर्क यही है कि हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, और वो कब होगा वो हमने बाबा में देखा उस दिन, और उस दिन बाबा ने 9 की बजाय 7 बजे ही क्लास करा के, और अंतिम स्थिति का एक लक्षण ये होता है कि कर्म शरीर के कर्म भोगों के ऊपर जो है योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। तो रोज कभी कभी कई बार बाबा को खांसी आती थी, लेकिन खांसी आते आते ऐसा लगता था जैसे बाबा की आंखें गीली हो गई हैं और तकलीफ हो रही है जैसे बाबा को, लेकिन बाबा तो कहता था, बाबा के एक साइड में लक्ष्मी नारायण का और कृष्ण का ट्रांसलेट का पिक्चर रहता था, बाबा कहते देखो बच्चे कल बाबा जाके ऐसा मिशनो कृष्ण बनेगा, तत्व भी सतो प्रधान होंगे, शरीर भी सतो प्रधान होगा, और कितनी नई दुनिया होगी, अभी तो ये पुराना शरीर है, खांसी आती है, ये तकलीफ होती है, लेकिन इन सब से आधा कल्प के लिए छुटकारा मिल रहा है। बच्चों को कितना खुशी होनी चाहिए, खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए, ऐसे बाबा कई बार करके बताता था कि कुछ भी हो लेकिन हमारी खुशी गायब ना। तो उस दिन बाबा ने उस दिन बाबा को एक बार भी न खांसी आई न कोई तकलीफ हुई, जो इस बात का प्रमाण है कि कर्म भोगों के ऊपर योग बल ने जैसे संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली थी, जो भी शरीर के कर्म भोग बचे कुचे थे वो। उसके बाद बाबा उठे, उठ करके बाबा दरवाजे की तरफ गए और बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। पहले ये शब्द बाबा ने कभी नहीं कहे, लेकिन उस दिन कहे कि अच्छा बाबा बच्चों से विदा लेता है, छुट्टी लेता है। हम लोगों ने तो समझा भाई बाबा गुड नाइट करके जैसे जाते थे तो गुड नाइट करके जा रहे हैं। बाबा अपने कमरे में गए, दादी जी के हाथ में हाथ, और नैन मुलाकात करते करते ही बाबा ने जैसे देह त्याग किया। लेकिन उस देह में ये भी ब्यूटी थी कि वो रखा रहा, 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा, 18 की रात भर रखा रहा, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का दिन, 20 की रात, क्योंकि सब तरफ से टेलीग्राम टेलीफोन आ रहे थे और मनमोहनी दीदी बड़ी दीदी भी नहीं थी यहाँ पर, तो रखो शरीर रखो हमारे। 21 तारीख को जब वो पहुंची सुबह, तो 21 को फिर दोपहर को संस्कार किया गया, और लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, कोई भी काला नहीं पड़ा, कोई दुर्गंध नहीं आई, न कोई इंजेक्शन दिया गया, न कोई दवाई लगाई गई, कुछ नहीं, लेकिन वैसा ही चमकता रहा। और ये इस बात का प्रतीक है कि 5 तत्वों के इस शरीर पर भी बाबा ने संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली थी। तो 5 तत्वों का शरीर, ऐसे ही हमें भी इन 5 तत्वों के शरीर पर भी जब हम विजय प्राप्त करेंगे, मन के ऊपर तो विजय प्राप्त कर ही रहे हैं जो बाबा ने कहा है, लेकिन मन के साथ साथ, मन के लिए योग, ज्ञान योग, धारणा, सेवा, ये सब मन के लिए है, लेकिन 5 तत्वों के ऊपर भी हम ऐसा विजय प्राप्त कर लें, क्योंकि ये तत्व ही, ये शरीर ही हमारा सबसे निकट का साथी है। इसीलिए अब हमें भी ऐसा 5 तत्वों पर जब विजय प्राप्त कर लेंगे तो हम भी जैसे इच्छा मात्रम विद्या अंतमते सो गते। और इसके लिए हमें एक बात याद रखनी है, यहाँ मैं मम्मा की एक बात सुना के फिर समाप्त करता हूँ, कि मम्मा ने जब शरीर छोड़ा था 65 में, तो मम्मा ने जब शरीर छोड़ा, ऊपर गई मम्मा सूक्ष्म वतन में, वहाँ सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा बाबा, उनमें शिव बाबा वहाँ पर थे, तो मम्मा को बाबा ने पूछा, मम्मा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो? तो मम्मा चुप रही। फिर पूछा, मम्मा आपने कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया कि नहीं बाबा? तो बाबा ने कहा कि जाओ बच्ची नीचे जाओ, अभी हिस्ट्री हॉल में तुम्हारा शरीर रखा है और वहाँ सब बच्चे योग में बैठे हुए हैं और तुम जाके वहाँ उस शरीर में कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। बाबा ने मम्मा को नीचे बैठा, मम्मा नीचे आई और फिर कुछ समय के बाद मम्मा ऊपर गई वापस। तो बाबा ने पूछा, बच्ची अनुभव किया कर्मातीत स्थिति का? तो मम्मा ने कहा, नहीं बाबा, मैंने तो नहीं किया। क्यों बच्ची? क्योंकि बाबा मैंने कोशिश करी और शरीर में प्रवेश करने की, लेकिन वो शरीर तो ठंडा हो चुका था, उसमें कोई चुरपुर नहीं हुई, कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, तो मैं तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं कर सकी। तब बाबा ने कहा था, देखो बच्ची, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करे बिना, एक बात और बता दिया कि हरेक की कर्मातीत स्थिति अपनी अपनी है, सबकी कर्मातीत स्थिति एक जैसी नहीं है, हरेक की अलग अलग है। तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किए बिना कोई भी आत्मा परम धाम वापस नहीं जा सकती, क्योंकि परम धाम से जब बच्चे आए थे तो बिल्कुल पवित्र थे, इसलिए उसी पवित्र स्थिति को प्राप्त करके हमें वहां जाना है। तो अब तुम अपना पार्ट बजाने के लिए जाओ दूसरी जगह, और वहां पर रहे हुए जो कर्म बाकी हैं वो करो, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करो और उसके बाद तब परमधाम आओगी। और यही संदेश सब बच्चों के लिए है कि हर एक बच्चे को अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके जाना है, कभी भी शरीर से या किसी संबंधों की कटुता से या किसी बात से प्रॉब्लम से घबराए नहीं। ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है, चलता नहीं है, इतनी बीमारियां हैं, ये है वो है, नहीं, किसी भी हालत में ये शरीर संगमयोगी बहुत बहुत वैल्यूबल है, इससे घबराए नहीं। और जब इससे घबराएंगे नहीं तो तब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके जब ऊपर आएंगे तब बाबा और सब बच्चे साथ ही साथ परमधाम चलेंगे, और तब ही फिर उसके बाद साथ साथ नई दुनिया में आएंगे और पार्ट बजाएंगे। तो इसीलिए अब हमें ये लक्ष्य रखना है, एक तो हम समेटते चले, कोई काम रह जाते हैं, कई बार सोचते हैं चलो हम अपना ये मकान सेंटर को दे दें, चलो ये हम अपनी विल पावर में विल में ये लिख दें, ये कर ले धन तन मान धन, लेकिन चलो कल कर लेंगे, चार दिन बाद कर लेंगे, ऐसा करते करते भी कई बार समय निकल जाता है। और जब उनके संबंधी यहाँ यो भोग लगाने आते हैं तो फिर वो आत्माएं बताती हैं संदेश, बड़ा रोते हैं, अरे मैं सोचता ही रह गया ये कि मुझे ये करना है लेकिन ये मैं नहीं कर सका और मेरा शरीर छूट गया, और चूंकि उस बातों की स्मृति थी इन कारण से मुझे ऐसी जगह जन्म लेना पड़ा। इसी तरह भाइयों की कोई भी समेटे हुए कामना फैलाओ तो न करें, बल्कि अब समेटते रहें। और दूसरी तरफ इसी तरह माताओं का भी कोई भी कार्य ऐसा हो, फैला हुआ न हो, जो भी घर की चाबी वाबी बहुओं को देनी हो दे जा के पूरा करो, सारा उन्हें निपटा दो, और अंत समय के लिए बस हम यही करें कि अंत समय अंत मते सो गति, बस ब्रह्मा बाबा को भी ना जैसे गति ऐसी हुई सदगति, और ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। हम सबको भी वो करना है। तो बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा आपकी अंतिम स्थिति कैसी थी वो आप बताओ। तो बाबा ने बताया कि बच्ची, क्लास करा के जब मैं आया तो मेरे हार्ट में बहुत पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था। तो एक तरफ तो दर्द बहुत हो रहा था, कई बार बाबा ने भी बताया सबसे अच्छी मृत्यु हार्ट अटैक की है, तो एक तरफ तो दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, और बस दूसरी तरफ मैं बाबा को कह रहा था, बाबा मैं आपके पास आया कि आया लेकिन
दर्द की स्मृति भी बहुत थी क्योंकि दर्द बहुत तेज था। लेकिन जितना जितना मैं स्वस्थिति में स्थित होता चला गया उतना उतना दर्द ये कम होता चला गया। और धीरे धीरे जब मैं पूरी स्वस्थिति में स्थित हो गया ना तो ये दर्द बिल्कुल खत्म हो गया और आत्मा ने शरीर से ऐसे छोड़ दिया, आत्मा ने शरीर को जैसे मक्खन से बाल, उस तरीके से आत्मा शरीर छोड़ के चली गई और अंत समय किसी भी चीज की स्मृति नहीं थी, ना बच्चों की स्मृति ना किसी की भी, क्योंकि बच्चों की स्मृति होती तो फिर बच्चों से छुट्टी नहीं ली, बाबा ने को बच्चों ने कहा था तो बाबा ने कहा बच्चे अगर बाबा छुट्टी मांगता तो तुम बच्चों बाबा को छुट्टी देते, नहीं देते तुम्हारी याद रह जाती तो पूरी सदगति तो होती नहीं बाबा। तो इस तरीके से हमें भी ये लक्ष्य रखना है, अंत समय हमें कोई भी व्यक्ति वस्तु वैभव कोई साधन कुछ भी याद न रहे। और वो तब याद नहीं रहेगा जब हम धीरे धीरे समेटते जाएंगे। समेटने का ये मतलब नहीं सब छोड़ छाड़ के चले जाएं, घर में रहें लेकिन ममत्व न हो उस चीज में। आज वो चीज न मिले तो उसकी वजह से हमारा शरीर छोड़ना रुक जाए। कई बार होता है ना, कई आत्माएं बस बहुत बीमार होती है, शरीर छोड़ने के लक्ष्य पे होती है लेकिन छोड़ नहीं पाती। और जब कोई आता है जहां उनका मन अटका होता है उसको देखा बात की शरीर छोड़ देते हैं। तो बस हमें भी यही रहे, भीष्म पितामह की तरह ब्रह्मा बाबा हमारे सामने उदाहरण है। जैसे बाबा ने जिया जैसे रहे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते गए और अब जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा उसी के अनुसार हम सब अपने को तैयार करें जिससे हम सबकी अंत मते सो गति हो जाए और सिद्धि स्वरूप बाबा की तरह हम सब भी बन जाए। ओम शांति, ओम शांति।